नमस्कार भारत, तारीख 26 अक्टूबर दिन सोमवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। भटक कर पाकिस्तान जा पहुंची दशक से भी ज्यादा वक्त बाद लौट रही है भारत की गीता।
On the 26th of October 2015, we will be bringing Geeta back to India. Together with Geeta, we have invited...
बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। नीतीश के तांत्रिक वाले वीडियो के बहाने लालू पर भी हुआ है वार।
मुझे बताइए, दुनिया का कोई भी तांत्रिक बिहार के नौजवान को भ्रमित कर सकता है क्या? अगर यही करना है तो आपकी पार्टी का नाम भी तो बदल दो, राष्ट्रीय जादू टोना दल।
214 रनों के भारी अंतर से दक्षिण अफ्रीका ने हराया भारत को, सीरीज भी अपने नाम की। कार्यक्रम में खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। एक दशक से भी ज्यादा समय से पाकिस्तान में रह रही भारतीय लड़की गीता आज वापस अपने देश भारत लौट रही हैं। जब वो 11 साल की थी तो गलती से सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गई। गीता पाकिस्तान एयरलाइन के विमान से भारतीय समयानुसार सुबह 8:30 बजे भारत के लिए रवाना होंगी। उनके साथ उनकी देखभाल करने वाले ईदी फाउंडेशन के लोग भी होंगे। दिल्ली में आज से तीसरी इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का आयोजन हो रहा है। भारत की मेज़बानी में हो रहे इस सम्मेलन में अफ्रीका महाद्वीप के 54 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। 3 दिन की ये समिट 29 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें भारत और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार, सांस्कृतिक संबंध और शिक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले ये समिट 2008 और 2011 में आयोजित हो चुकी है। यूरोप में मौजूदा प्रवासी संकट का हल निकालने के लिए यूरोपीय देशों की बैठक जारी है। ये देश प्रवासी संकट को लेकर आपसी मतभेद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है कि प्रवासियों को रास्ता देने से पहले पड़ोसी देशों से सहमति के आधार पर समझौता जरूरी हो। इस बैठक में यूरोपीय संघ के 10 और गैर यूरोपीय संघ के 3 देश हिस्सा ले रहे हैं। स्लोवानिया के प्रधानमंत्री मीरो सिरार ने चेतावनी भरे लहजे में कहा,
If we do not deliver some immediate and concrete actions on the ground in the next few days and weeks,
अगर हमने प्रवासी संकट को जल्द ही नहीं सुलझाया तो मुझे लगता है कि यूरोपीय संघ ढह जाएगा और यूरोप की एकता खतरे में पड़ जाएगी। ये थे प्रवासी संकट पर अपनी चिंता जाहिर करते स्लोवानिया के प्रधानमंत्री। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पोलैंड में कंजर्वेटिव लॉ एंड जस्टिस पार्टी की संसदीय चुनाव में जबरदस्त जीत लगभग तय हो गई है। लॉ एंड जस्टिस पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान यूरोपीय संघ और प्रवासियों के प्रति कड़ा रुख अपनाने की बात कही थी। एग्जिट पोल के मुताबिक इस पार्टी को कुल 39% वोट मिले हैं। 1989 में पोलैंड में लोकतंत्र के फिर से बहाल होने के बाद यह पहला मौका होगा जब किसी एक पार्टी को बहुमत मिलेगा। सीरिया में सक्रिय विद्रोही गुट फ्री सीरियन आर्मी ने रूस के मदद के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। गुट के प्रवक्ता ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अपने ही देश में कत्लेआम कर रहे असद का समर्थन कर रहा है। फ्री सीरियन आर्मी को पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है। इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेफ्रोव ने कहा था कि रूस फ्री सीरियन आर्मी की मदद को तैयार है, बशर्ते वो इस्लामिक स्टेट पर हमले करे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। करीब एक दशक से ज्यादा वक्त पहले गलती से भारत की सीमा पार कर पाकिस्तान जा पहुंची गीता आज भारत लौट रही हैं। गीता के साथ पाकिस्तान में उनकी देखभाल करने वाले ईदी फाउंडेशन के सदस्य भी भारत आ रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक गीता ने जिस परिवार के अपने परिजन के तौर पर पहचान की है उसके डीएनए टेस्ट के मिलान के बाद उसे सौंप दिया जाएगा। अगर डीएनए टेस्ट का मिलान नहीं हुआ तो उनके रहने की दूसरी व्यवस्था की जाएगी। एक रिपोर्ट सुनिए निखिल रंजन से।
तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे, हे नबी तू बुलाता है।
ढेरों दुआएं, फरिश्ते जैसा दिल रखने वाले नायक की ये जिद कि वो तमाम परेशानी झेलकर भी बोल नहीं पाने वाली मुन्नी को बॉर्डर पार बिछड़े परिवार से मिलाएगा और आखिर में हैप्पी एंडिंग। इस दिलचस्प कहानी के जरिए बॉलीवुड के फिल्म बजरंगी भाईजान ने कामयाबी के झंडे लहरा दिए। अब इसे मिलती जुलती एक कहानी हकीकत में अंजाम की तरफ बढ़ रही है। करीब 11 साल पहले अपने परिवार से बिछड़कर गलती से बॉर्डर पार करने वाली गीता आज भारत लौट रही है।
On the 26th of October 2015, we will be bringing Geeta back to India. Together with Geeta, we have invited
26 अक्टूबर 2015 को हम गीता को भारत वापस लाएंगे। गीता के साथ हमने ईदी फाउंडेशन के 5 सदस्यों को आमंत्रित किया है। वो राजकीय अतिथि के तौर पर भारत में रहेंगे।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप के शब्द। साल 2004 में गीता पाकिस्तान के बॉर्डर गार्ड्स को मिली थी, जिसे उन्होंने ईदी फाउंडेशन को सौंपा था। लाहौर और इस्लामाबाद में कुछ दिन रहने के बाद वो कराची पहुंची थी। गीता सुन और बोल नहीं सकती। उसे गीता नाम भी पाकिस्तान में उसकी देखभाल करने वाली ईदी फाउंडेशन के संस्थापक एएस ईदी की पत्नी बिल्किस ईदी ने दिया है। गीता ने इशारों में जानकारी दी कि वो भारत से आई है। उसने एक परिवार की पहचान अपने बिछड़े परिजन के तौर पर की है, लेकिन उसकी देखभाल करने वाले ईदी फाउंडेशन ने इस परिवार के दावों पर सवाल उठाए हैं। फाउंडेशन से जुड़े फैसल ईदी कहते हैं,
वो वालिदैन कहते हैं गीता शादीशुदा थी और इसका एक बच्चा है। गीता से हमने जब पूछा तो गीता ने मना किया, मैं शादीशुदा नहीं थी, मैं सिर्फ 10 साल की थी जब आई थी, मेरा कोई बच्चा नहीं है। तो इसकी वजह से जो है हमें बहुत सारे डाउट्स हैं कि गीता ने जो है वो गलत फैमिली आइडेंटिफाई की है। इंडियन एम्बेसी को भी अंदाजा है कि ये किसी गलत फैमिली को आइडेंटिफाई कर रही है, लेकिन आगे जाके जब इन्वेस्टिगेशन होगी और डीएनए टेस्ट होंगे तो उनसे भी जो है ना इनको क्लैरिटी मिल जाएगी।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि गीता ने जिस परिवार की पहचान की उसे तभी उनके साथ भेजा जाएगा जबकि डीएनए टेस्ट के नतीजे माकूल हों। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप,
गीता हैज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड One family as possibly being that of her parents. We will be doing DNA testing.
गीता एक परिवार की पहचान कर चुकी है जो संभवतः उसके माता पिता हो सकते हैं। अगर DNA टेस्ट का मिलान होता है तो गीता को उस परिवार के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अगर मिलान नहीं होता है तो हमने समुचित संस्थानों का चयन किया है जहां गीता की ठीक से देखभाल हो सकेगी।
भारत और पाकिस्तान ने गीता को उसके परिवार से मिलाने के लिए हालिया तल्ख रिश्तों को बीच में नहीं आने दिया। अब भारत वापसी के बाद गीता की कहानी क्या मोड़ लेती है, ये जानने की दिलचस्पी सरहद के इस पार भी होगी और उस पार भी।
तो ये रिपोर्ट आपने सुनी, निखिल रंजन की रिपोर्ट। गीता ने जिस परिवार की पहचान की है वो बिहार के सहरसा जिले के कबीरा थाप गांव में रहता है। सलमान रावी ने हाल ही में उस गांव का दौरा किया था। सीधे चलते हैं सलमान रावी के पास। सलमान, ये बताएं कि जब आप कबीरा धाप गांव गए थे तो उस परिवार के घर भी गए थे, उनके सदस्यों से भी आपकी मुलाकात थी जिनका दावा है कि गीता उनकी बेटी है, लेकिन आपको क्या लगा कि वाकई क्या गीता उन्हीं की बेटी है?
देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है मोहनलाल जी, क्योंकि जो तस्वीरें वहां पे मैंने देखी, तस्वीरें क्या, बस एक ही तस्वीर थी जो नजर आई गीता की, वो गीता जो तस्वीर में है वो काफी उम्र वाली है, और ये गीता जो टीवी के स्क्रीन पर हमें नजर आती है, दी फाउंडेशन के पास जो गीता है उसकी उम्र काफी कम नजर आती है। और ये बात भी सही है कि जो वहाँ पे गीता है वो शादीशुदा है या नहीं, इस पर बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ जो जिस गीता पर ये दावा कर रहे हैं कि हमारी हीरामनी है, वो गीता शादीशुदा, हीरामनी शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है जो लुधियाने में रहता है पति के साथ। और कमाल की बात यह है कि शादी के बाद, बच्चा होने के बाद वो यहाँ से, यानी कि उस गांव से लुधियाना गई और उसके बाद फिर वो खो जाती है किसी मेले में। तो अभी बहुत उसमें पेच बाकी है क्योंकि यही मामला जाके फंसा
और इसीलिए डीएनए टेस्टिंग की बात हो रही है। सलमान, कई और परिवारों ने भी इस गीता के लिए अपने दावे पेश किए हैं और भारत के विदेश मंत्रालय का भी कहना है कि डीएनए टेस्ट के मिलान होने के बाद उस परिवार को सौंप दिया जाएगा और अगर मिलान नहीं होता है तो किसी आश्रय स्थल में उनको रख दिया जाएगा। आज किस तरह का कार्यक्रम है गीता के यहाँ आने का?
देखिए, अभी तो वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो फ्लाइट है उससे आएंगी और ईदी फाउंडेशन के कुछ सदस्य आएंगे। जैसा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे थे कि राजकीय अतिथि का दर्जा मिलेगा जो आ रहे हैं उनके, उनको रखा जाएगा। और उसके बाद जो है इसी फाउंडेशन का भी कहना है कि साहब जब तभी सौंपा जाए गीता को जब डीएनए का जो है मिलान हो जाए। जी। तो अब ये सारा मामला जाकर डीएनए पे फंसा।
लेकिन चलिए, सकारात्मक पहल तो इस बारे में है ही कि गीता जो कि भारत की नागरिक है वो हिंदुस्तान लौट रही है वापस। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान रवि आपका। बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र। तीसरे दौर का मतदान 28 अक्टूबर को होना है। आज 6 जिलों की 50 सीटों पर प्रचार थम जाएगा। इस दौर में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत कई चर्चित उम्मीदवार हैं। प्रचार थमने के पहले सभी पार्टियां वोटरों तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। कल के बाद आज भी नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं, राहुल गांधी भी रैली करेंगे। मोदी की रैली बक्सर और सिवान में है, राहुल पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में रैली करेंगे। लेकिन इस चुनाव प्रचार में शनिवार की सुबह से ही उस वीडियो की चर्चा हो रही है जिसमें नीतीश कुमार एक तांत्रिक से गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपनी रैलियों में लालू नीतीश पर जमकर निशाना साधा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस वीडियो में नीतीश कुमार की अंधविश्वास विरोधी होने की छवि को बड़ा धक्का लगा है? पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट में सुनिए कि किस तरह से मोदी ने नीतीश पर जमकर निशाना साधा।
मुझे बताइए, दुनिया का कोई भी तांत्रिक बिहार के नौजवान को भ्रमित कर सकता है क्या? अरे लालू जी, आप काले कबूतर काटो, सफेद कबूतर काटो, मिर्ची का धुआं करो, अगर यही करना है तो आपकी पार्टी का नाम भी तो बदल दो, राष्ट्रीय जादू टोना दल बदल दो और आप उसके मुखिया हिंदुस्तान के सबसे बड़े तांत्रिक।
दरअसल राजद सुप्रीमो लालू यादव ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि कैसा तांत्रिक, मैं खुद ही सबसे बड़ा तांत्रिक हूँ। शनिवार को ही नीतीश कुमार ने खुद सफाई देकर अपने ऊपर हो रहे राजनीतिक हमलों को कुंद करने की कोशिश की थी।
तो हम तो नीरज का मान रखने के लिए मिलने चले गए, मिलना कोई अपराध है? और वीडियो हम देखे उसमें कह रहे हैं कि बड़ा हम संकट में हैं, बाबा मेरी रक्षा करिए, कुछ उपाय कर दीजिए, मेरे विरोधियों का नाश कर दीजिए, कुछ कह रहे हैं।
लेकिन जानकारों के मुताबिक नीतीश की सफाई के बावजूद इस वीडियो से नीतीश की अंधविश्वास विरोधी होने की वह छवि चटकी है जिसे उन्होंने बहुत सचेत होकर गढ़ा था। 2011 के जुलाई में लगे सूर्य ग्रहण के दौरान नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से बिस्कुट खाया था। इस घटना के असर के बारे में वरिष्ठ पत्रकार इमरान खान बताते हैं।
सूर्य ग्रहण के दिन परिगना यहाँ पर वो एक ऑफिशियल कार्यक्रम में थे, उन्होंने बिस्किट जो है वो खाया था। कॉमनली जो है यहाँ पे लोकली ये समझा जाता है कि जब ग्रहण लगता है तो खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का एक एग्जांपल दिया और उन्होंने जो है बिस्किट खाया, जिससे एक बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज गया अक्रॉस द कंट्री।
वीडियो आने से पहले भी नीतीश कुमार से जुड़ी कुछ बातें उनके अंधविश्वासी न होने की छवि से मेल नहीं खाती थी। नीतीश न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष में यकीन रखने वाले माने जाते हैं। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार अंक 7 को शुभ मानते हैं। इसके दो नए पुराने सार्वजनिक उदाहरण मौजूद हैं। नीतीश कुमार की सरकारी एम्बेसडर कार का नंबर 7 है, साथ ही वे अभी भी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में ना रहकर 7 सर्कुलर रोड स्थित एक दूसरे आवास में रहते हैं। यह आवास उन्हें बतौर भूतपूर्व मुख्यमंत्री आवंटित किया गया था। तांत्रिक से मिलने, 7 नंबर की गाड़ी की सवारी करने या फिर 7 नंबर वाली रोड में रहने से क्या नीतीश कुमार के अंधविश्वासी विरोधी होने की छवि टूटी है? इस सवाल पर जदयू प्रवक्ता संजय सिंह का जवाब था,
नहीं नहीं, कोई छवि टूटी नहीं। अब थोड़े हम लोग हिंदू धर्म में पैदा नास्तिक थोड़े हैं। 7 नंबर का पहले से गाड़ी हुई रखा हुआ, जो मुख्यमंत्री रहते तो 7 नंबर हमको मिला।
खुद नीतीश कुमार और अब जदयू की सफाई के बावजूद इस वीडियो के बहाने दो बातें हुई हैं। इसने चुनावी माहौल में निजी आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर शुरू कर दिया है, साथ ही नीतीश की वह छवि भी दरकी है कि वे अंधविश्वास के खिलाफ पहल करने वाले नेता हैं। मनीष शांडिल्य, BBC, पटना।
बिहार विधानसभा चुनावों में सभी दलों की नजर बड़े वोट बैंक पर है। राज्य की मुख्य विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों को लुभाने के लिए कदम उठा रही है, तो सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयास को बता रही है पार्टी की हताशा। सुनिए पटना से ही नीरज सहाय की रिपोर्ट।
बिहार की पल पल गर्माती राजनीति हर दिन नए और बदलते समीकरण का गवाह बन रही है। राज्य की मुख्य विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अति पिछड़ा समाज के लोगों के बीच संदेश देने के लिए पिछले दिनों कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अति पिछड़ा समाज से आने वाले पूर्व मंत्री प्रेम कुमार को प्रेस वार्ता के दौरान अपने बगल में बैठाकर यह दर्शाने की कोशिश की कि वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके भीम सिंह को पार्टी में शामिल कराकर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि उनका सम्मान भाजपा में ही है। सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता संजय सिंह का कहना है कि भाजपा के साथ न पिछड़ा है और न ही अति पिछड़ा समाज है।
ये तीन फेज के चुनाव के लिए सब कारनामा कर रहे हैं और न उनके पास पिछड़ा है न अति पिछड़ा है। अब उनके नेता सुशील मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं सभी जाति के आधार पर नुनिया मेरे साथ है, बेलदार मेरे साथ है, तो बिंद मेरे साथ है, सहनी मेरे साथ है। अब ये हाल सुशील मोदी जी का हुआ, कल का लड़का उसको भी नेता बना रहे हैं। वही भीम सिंह जी हैं जो कि सेना के ऊपर उन्होंने बयान दिया था कि सेना तो होते ही शहीद होने के लिए, उसमें देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव में कहा था इनको निर्लज, जिनके पास न वोट है न पहचान।
बिहार में अति पिछड़ा समाज की लगभग 106 जातियां हैं। कुल आबादी में इनका हिस्सा तकरीबन 22-25% है। इनमें निषाद, चंद्रवंशी, धानुक, प्रजापति, बढ़ई प्रमुख जातियां हैं। इन तमाम जातियों के समर्थन प्राप्त होने का दावा भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव से ही कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि पार्टी में पहले से ही अति पिछड़ा समाज के कई नेता हैं। विधानसभा चुनाव में भी इस बड़े तबके का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है।
जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किए गए तो वो अति पिछड़े समाज से आते थे, इसलिए अति पिछड़ों का बहुत बड़ा तबका हमारे साथ जुड़ा और उसका समर्थन मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं अति पिछड़े वर्ग के लोग। अब जहाँ एक तरफ सरकार कहती थी जो जदयू की है या महागठबंधन की, वो अति पिछड़ों को कहती थी कि हमारे साथ है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में अति पिछड़ों ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी से देकर संदेश जता दिया कि अति पिछड़ा किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। अति पिछड़ा जहाँ उसको सम्मान मिलेगा वहां जाएगा, जहां उसका प्रतिनिधित्व होगा वहां जाएगा।
बिहार में हर दिन दिख रही नई सियासी गोलबंदी और रोज चल रहे आरोपों के तीर के बीच यह देखना रोचक होगा कि बाकी के बचे तीन चरणों में अति पिछड़ों को लुभाने में भारतीय जनता पार्टी कितनी सफल होती है और सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड इस बड़े वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के लिए कौन कौन सा वैकल्पिक तरीका अपनाती है। नीरज सहाय, BBC, पटना।
कार्यक्रम में अब अखबार के पन्ने पलट लेते हैं। प्रभात पांडे मौजूद हैं, अखबार भी पढ़ चुके हैं, अखबार आपके सामने, क्या कह रहे हैं अखबार आज?
जी मोहनलाल जी, बिहार चुनाव को लेकर और बिहार में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रैलियां की थी उनकी खबरें जो है वो प्रमुखता से छाई हुई हैं। जो पिछले दिनों जो है विपक्षी दलों ने और बिहार में जो नीतीश कुमार और लालू ने दादरी और गुड़गांव में और फरीदाबाद में हुई जिन घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार पर सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप लगाए थे, उसका जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया है। जो वो खबरों की हेडलाइन है, डाइवर्सिटी इज इंडियाज ब्यूटी एंड यूनिटी अवर मंत्रा सेज PM, ये टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है। और इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन भी यही है, हार्मनी यूनिटी मस्ट फॉर डेवलपमेंट PM। इसके अलावा गीता की जो घर वापसी हो रही है पाकिस्तान,
जो हमारे कार्यक्रम की शीर्ष खबर थी,
जी जी, उसकी खबर भी अखबारों ने प्रमुखता से छापी है। इसमें गीता जो है वो कराची में अपना सामान पैक कर रही हैं। अमर उजाला
मैं देख रहा हूँ, ये जो फोटो है उसमें अपना सामान वो धीरे धीरे पैक कर रही है,
सामान पैक कर रही है। अमर उजाला ने वो तस्वीर के साथ वो खबर दी है। इसके अलावा जनसत्ता में भी यही खबर है, आज आएगी गीता भारत में, इंतजार। इसके अलावा कल भारत की जो दक्षिण अफ्रीका के हाथों करारी हार हुई 214 रनों से, अगर आपने वो मैच देखा हो
बिल्कुल,
तो वो खबर भी प्रमुखता से
और मुझे जो जनसत्ता की हेडलाइन है ना, ये बड़ी शानदार लग रही है, वो कुछ नहीं लिखा है, शर्मनाक,
सिर्फ शर्मनाक लिख के उन्होंने छोड़ दिया है और उसके बाद जो है वो खबर दी हुई है। इसके अलावा हिंदू में जो बाल यौन अपराध हैं उनको लेकर हाईकोर्ट के जो तमिलनाडु हाई कोर्ट हैं उनके एक जज की टिप्पणी जो है वो काफ़ी उसको प्रमुखता से छापा है द हिंदू ने। इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो बाल यौन अपराध के अपराधी हैं उनका कैस्ट्रेशन यानि बंध्यकरण कर देना चाहिए, ये खबर को द हिंदू ने प्रमुखता से छापा है। आपके हाथ में भी जनसत्ता है,
जनसत्ता है, और जानते हो मुझे इसमें एक बहुत ही शानदार, हमेशा की तरह एक आजकल हर अखबार में कार्टून छपते नहीं है, तो जनसत्ता में इरफान का कार्टून छपता है और ये कार्टून है दिल्ली सरकार में जो हड़ताल जारी थी कचरा जो सफाई कर्मी थी, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोग खड़े हैं, हड़ताल हड़ताल लिखा हुआ है, बड़ी मुश्किल से तो हमने ये कचरा फैलाया था, और बीच में लिखा हुआ है दिल्ली सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। तो उनको लग रहा है कि भाई कचरा तो हमने फैलाया था और अब हड़ताल हमें खत्म करनी पड़ रही है।
जी जी, वैसे मोहनलाल जी, जब दिल्ली में सफाई कर्मी हड़ताल पर नहीं रहते तब भी कोई खास दिल्ली के कई इलाकों में कोई खास सफाई देखने को नहीं मिलती है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात पांडे आपका। और अब कार्यक्रम में भारत में जिस तरह से साहित्यकारों ने अपने सम्मान लौटाए हैं उस पर आपको सुनाते हैं बीबीसी उर्दू संवाददाता वुसतुल्ला खान की डायरी।
भारत में अल्पसंख्यक गुटों, लिखारियों और पाकिस्तानी फनकारों और यात्रियों को लेकर तरह तरह की छुटपुट घटनाएं लगातार सामने आने के बाद से ट्विटर और फेसबुक पर मैं एक इंडियन हूं पर पाकिस्तान से नफरत नहीं करता या मैं एक पाकिस्तानी हूं पर भारतीयों से नफरत नहीं करता की कैंपेन भी चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि भारत में भले संविधान सेकुलर हो के पाकिस्तान में इस्लामी, मगर गिरेबान दोनों का फटा पड़ा है, जिसमें झांकने से पता चलता है कि जात पात और भेदभाव दोनों को एक ही तरह से निगले जा रहा है। अगर भारत में दलित और मुसलमान टारगेट हैं तो पाकिस्तान में क्रिश्चियन, हिंदू और अहमदी। भारत में अगर बीफ का मुद्दा बवाल बनाया जा रहा है तो पाकिस्तान में इसका जवाब तौहीन मजहब के कानून का शिकंजा है। भारत में अगर अक्सरियत के ख्यालात से हटके बात करने वाले हिंदू लेखकों को जान के लाले पड़े हैं तो पाकिस्तान में बहुत से ब्लॉगर्स और जावेद अहमद गामदी जैसे खुली सोच वाले आलिमों को जान से जाने का खतरा है। पर अच्छी बात यह है कि प्रतिरोध भी देखने में आ रहा है। अगर भारत में अखलाक अहमद, कुलबर्गी और हरियाणा के दलित बच्चों के कत्ल पर डिबेट आगे बढ़ रही है तो पाकिस्तान में सुलेमान तासीर के हत्यारे मुमताज़ कादरी की सजाए मौत की सुप्रीम कोर्ट से तौसीख पर भी अब खुल के इत्मीनान जाहिर किया जा रहा है। लाहौर और पेशावर की नगर पालिकाओं और कुछ सरकारी संस्थाओं की तरफ से ऐसे इश्तहारात भी सिविल सोसाइटी के दबाव पे पहली बार वापस लिए गए हैं, जिनमें सफाई कर्मचारियों की मुलाजमत के लिए सिर्फ गैर मुस्लिम लोगों से दरख्वास्त मांगी गई थी। अब नए इश्तहारों के हिसाब से मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों ही सैनिटरी वर्कर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बार के मुहर्रम में दो आतंकवादी हमले हुए, 30 लोग मारे गए, मगर पिछले वर्ष तो 70 के लगभग मारे गए थे। इस बार मुहर्रम के 10 दिनों तक देश भर में तकरीबन 1,500 ऐसे मौलवियों और जाकिरों को घरों तक पाबंद रखा गया जिनकी तकरीर से आग लग जाती है। पहले मुंह से शोले निकालने वालों की इतनी पकड़ धकड़ नहीं हुआ करती थी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ये सवाल भी उठ रहा है कि सीमा पार अच्छे दिनों का बता के नफरत फैलाने वाले कल से ज़्यादा आज कैसे खुले फिर रहे हैं और जिन्हें उनके मुंह बंद करने चाहिए वो दूसरी तरफ मुंह किए क्यों खड़े हैं, और गुलजार साहब जैसी हस्ती को भी क्यों कहना पड़ गया है कि उन्होंने देश में इतनी नफरत पहले कभी नहीं फैलती देखी। देखिए, पाकिस्तान ने 30-40 वर्ष पहले ज़िया के ज़माने में अपना पहिया अलग से ईजाद करके उल्टा चलाने की कोशिश की। इस चक्कर में हाथ ज़रूर थक गए पर चक्र नहीं चल पाया। अब भारत में कुछ लोग हज़ारों वर्ष पुराना पहिया छोड़ के अपना पहिया अलग से घुमाना चाह रहे हैं कि हो सकता है इस बार बात बन जाए। लेकिन मैं पाकिस्तानी तजर्बे की रोशनी में गारंटी देता हूँ कि पहिया उल्टा चले ना चले, जूता जरूर चल जाता है।
पहिया उल्टा चले ना चले, जूता जरूर चल जाता है। ये थी बीबीसी उर्दू संवाददाता वुसतुल्ला खान की डायरी।
दुनिया की बड़ी खबरें बीबीसी के साथ सोमवार से शुक्रवार देखिए टीवी पर बीबीसी दुनिया, ईटीवी नेटवर्क के हिंदी और उर्दू के सभी चैनलों पर।
नमस्कार, स्वागत है आप सबका, यह है बीबीसी दुनिया, मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर।
यहाँ आकर वो लोगों को गले लगाते हैं और कहते हैं हम अब आजाद हैं।
उससे बात करने में बहुत मजा आता है।
तो देखना मत भूलिए बीबीसी दुनिया शाम 9:20 पर ईटीवी के साथ साथ bbchindi.com और बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर भी। बीबीसी दुनिया।
और अब कार्यक्रम में उन खबरों की बात करते हैं जिन पर आज हमारी रहेगी नजर।
नरेंद्र मोदी आज बिहार के सीवान और बक्सर में चुनावी सभाएं करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी बिहार के चुनावी मैदान में आज दिखेंगे। वो पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिहार में तीसरे चरण का मतदान 28 अक्टूबर को है। इसके अलावा दिल्ली में आज से तीसरी इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन में अफ्रीका महाद्वीप के 54 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को गिरफ्तारी से राहत देने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में वीरभद्र सिंह की गिरफ्तारी पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को रोक लगा दी थी। आज से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब तक के सबसे लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड बेचना शुरू करेगा। शुक्रवार को रिजर्व बैंक 1000 करोड़ रुपए की कीमत के ये बॉन्ड बेचेगा, जिनकी मैच्योरिटी की अवधि 40 साल तक होगी।
और अब कार्यक्रम में सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्ता।
था दक्षिण अफ्रीका ने बल्लेबाजी का किया था फैसला, 438 रन का विशाल काय स्कोर खड़ा किया है। अब भारत को करना होगा पीछा, कर सकते हैं, देखना होगा कैसे करते हैं।
कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए पांचवें और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को आसानी से 214 रन से मात दी। जीत के लिए 439 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 35.5 ओवर में ही 224 रन पर सिमट गई। भारत के लिए अजिंक्य रहाणे ने सबसे अधिक 87 रन बनाए। उन्होंने केवल 58 गेंदों का सामना किया और 9 चौके और 3 छक्के लगाए। पहली बार इस सीरीज में सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का बल्ला भी चला और उन्होंने 60 रन बनाए। लेकिन जब पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने हो और गेंदबाज दक्षिण अफ्रीका के हो तो जीत की उम्मीदें तो वैसे ही कम थी। ऊपर से रोहित शर्मा 16 हैं, विराट कोहली 7 और सुरेश रैना केवल 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। आखिर में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 27 रन बनाकर कुछ संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये योगदान भी ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन ने 38 रन देकर 3 और कैगिसो रबाडा ने 41 रन देकर 4 विकेट लिए। इमरान ताहिर ने भी 50 रन देकर 2 विकेट लिए। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पिच पर रनों की बारिश कर दी और निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 438 रन बनाए। इस दौरान सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 109 और कप्तान एबी डिविलियर्स ने 119 रनों की शतकीय पारी खेली। इनके अलावा फेफ डुप्लेसिस ने भी रिटायर हर्ट होने से पहले 133 रन बनाए। इन तीनों शतकों में डिविलियर्स ने तो भारतीय गेंदबाजी का कत्लेआम किया। उन्होंने अपनी इस खास पारी में केवल 61 गेंदों पर 3 चौके और 11 छक्के लगाए। वैसे दक्षिण अफ्रीकी टीम ने पूरी पारी के दौरान भारतीय गेंदबाजों की गेंदों पर 38 चौके और 20 छक्के मारे। भारत के भुवनेश्वर कुमार ने 106 रन देकर 1, मोहित शर्मा ने 84 रन देकर 1 और हरभजन सिंह ने भी 70 रन देकर 1 विकेट लिया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने 2020 सीरीज भी 2-0 से अपने नाम की थी। यह पहला अवसर है जब दक्षिण अफ्रीका ने भारत से भारत में कोई एक दिवसीय सीरीज जीती। अब दोनों देशों के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मैच अगले महीने 5 नवंबर को मोहाली में खेला जाएगा। उधर कोलंबो में श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां कल खेल का चौथा दिन बारिश की भेंट चढ़ गया। इससे पहले खेल के तीसरे दिन जब खेल समाप्त हुआ तब वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 244 रनों का लक्ष्य था और उसने एक विकेट खोकर 20 रन बना लिए थे। वहीं दुबई में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन कल पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 491 रनों का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करते हुए इंग्लैंड ने स्टंप के समय तक 3 विकेट खोकर 130 रन बना लिए थे।
और इससे पहले कि कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
एक दशक से भी ज्यादा समय से पाकिस्तान में रह रही भारतीय लड़की गीता आज वापस अपने देश भारत लौट रही हैं। दिल्ली में आज से तीसरी इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन में अफ्रीका महाद्वीप के 54 देश हिस्सा ले रहे हैं। यूरोप में मौजूदा प्रवासी संकट का हल निकालने के लिए यूरोपीय देशों की बैठक जारी है। पोलैंड में कंजर्वेटिव लॉ एंड जस्टिस पार्टी की संसदीय चुनाव में जबरदस्त जीत लगभग तय हो गई है। एग्जिट पोल के मुताबिक इस पार्टी को कुल 39% वोट मिले हैं। सीरिया में सक्रिय विद्रोही गुट फ्री सीरियन आर्मी ने रूस की मदद के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। गुट के प्रवक्ता ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमरीका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर इराक में सत्ता सद्दाम हुसैन के हाथ होती तो विश्व के हालात कुछ बेहतर होते। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। एक घंटे बाद यानी कि भारतीय समय के मुताबिक 8 बजे आपसे फिर से मुलाकात होनी है। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।